अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के तृतीय प्रकरण में छठवीं खंडिका तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। आचार्य पिप्पलाद जी से कौशल्य ऋषि के अलग अलग छह प्रश्न हैं, उन छह प्रश्नों का उत्तर तृतीय प्रकरण है। पहले प्रश्न तथा द्वितीय प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। पहला प्रश्न प्राण की उत्पत्ति किससे होती है इत्याकारक था, उसका उत्तर दिया परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है ये बताकर। द्वितीय प्रश्न है कि उत्पन्न हुआ प्राण शरीर में क्यों प्रविष्ट होता है, उसका क्या निमित्त है शरीर प्रवेश का। तो शरीर प्रवेश का निमित्त बताया कर्म को, मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, इस वाक्य से। तृतीय प्रश्न था कि इस यह प्राण वर्तमान शरीर में अपने को अलग अलग विभागों में विभक्त करके कैसे अवस्थित रहता है, और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा के दृष्टांत से शुरुआत की चतुर्थ खंडिका से। तो राजा जैसे अपने राज्य की सुव्यवस्था के लिए अपने अधिकारियों को अलग अलग देश के विभागों में नियुक्त करता है, ऐसे ही इस शरीर में सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो अलग अलग तत्व हैं उनको अलग अलग गोलकों में स्थापित करता है मुख्य प्राण, और स्वयं भी रहता है इनमें से। जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं इनका तो गोलक प्रसिद्ध ही है, शरीर में प्राण के अलग अलग पांच वृत्तियों का अलग अलग स्थान जो अप्रसिद्ध है उसे पंचम कंडिका से बताना प्रारंभ किया है आचार्य पिप्पलाद जी ने। जो अपान नाम की वृत्ति है प्राण की, प्राण अपने अपान नामक वृत्ति विशेष को पायु और उपस्थ में स्थापित करता है, और स्वयं प्राण नामक वृत्ति रूप जो प्राण है वह चक्षु और श्रोत्र में अवस्थित रहता है, और प्राण तथा अपान का जो स्थान बताया गया चक्षु श्रोत्र और पायु उपस्थ, इन दोनों का जो मध्य है वो है नाभि, उस नाभि स्थान में स्थित करता है समान नाम के वायु को। और ये समान नाम का वायु अलग अलग अंगों को पुष्ट करने वाला जो अन्न रस है, हमारे द्वारा भुक्त अन्न तथा पीत जलादि को पाचन क्रिया के माध्यम से तीन विभागों में विभक्त कर लेता है उदरीय अग्नि, और मध्यम जो अंश होता है अन्न का उसका अन्न रस बनता है, और वह शरीर के अलग अलग अंगों को पुष्ट करता है। उसका पहले सारे अन्न रस का संग्रह होता है हृदय देश में, इसलिए कहा गया कि नाभि देशस्थ जो समान नाम का वायु है वह शरीर के सभी अंगों में अन्न रस को पहुंचाने के लिए पहले हृदय देश में ले जा करके संग्रहित करता है और वहां से फिर अलग अलग अन्न रस संवाहक जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों के माध्यम से अलग अलग अंगों में अन्न रस पहुंचता है और उसी अन्न रस से संपोषित हुए जो गोलक हैं चक्षुरादि इंद्रियों के शीर्षस्थ गोलक वो हैं सात, दो गोलक हैं श्रोत्र इंद्रिय के, दो गोलक हैं नेत्र इंद्रिय के, दो गोलक हैं घ्राण इंद्रिय के और एक है रसन इंद्रिय का और इनसे ये अपने अपने विषयों का ग्रहण अपने जो परिपुष्ट शरीर के अंग रूपी गोलक हैं उनमें स्थित होकर के चक्षुरादि इंद्रियां अपने अपने विषय रूपादि का जो ज्ञान कराती हैं वह ज्ञान माना जाता है इस उदरीय अग्नि रूप आह्वनीय अग्नि का अर्ची के तरह अर्ची यानी ज्वालाएं। तो इस प्रकार ये समान वायु अन्न रस को समान रूप से सब पहले हृदय देश में और फिर वहां से सभी देशों में पहुंचाता है ये बताया गया पंचम खंडिका में और षष्ठ खंडिका में बताया जा रहा है कि व्यान नाम का जो एक प्राण का भेद है उसका स्थान शरीर में नाड़ियां हैं और वो नाड़ियां निकलती कहां से हैं और फैलती कहां तक हैं। तो इसलिए ये हृदय में बताया गया आत्मा की उपाधि भूत अंतकरण का स्थान हृदय हेश आत्मा, इसमें आत्मा शब्द लक्षणा से आत्मा की उपाधि भूत अंतकरण का परामर्शक है और वह अंतकरण है कहा हृदय देश में और अंतकरण को यानी मन को फिर अपने गोलक से निकल करके अलग अलग इंद्रियों के गोलकों में जाना पड़ता है और उन गोलकों में स्थित इंद्रियों के माध्यम से फिर उनके विषय रूपादि तक ये मन जाता है फिर वापस आता है हृदय देश में। इसके लिए मन का सुगमता से विषय देश तक इंद्रियों के माध्यम से जाना हो सके फिर वापस अपने गोलक में आकर के वह स्थित हो सके तो मार्ग चाहिए। तो मन के विचरण के लिए मार्ग के तरह मार्ग का काम करती है नाड़ियां और वे नाड़ियां हैं मुख्य नाड़ियां तो मानी जाती है 101 वो निकलती है हृदय से ही और उन मुख्य 101 नाड़ियों की शाखा नाड़ियां हैं प्रत्येक नाड़ी की 100-100 ऐसे 101 नाड़ी की प्रत्येक नाड़ी की 100-100 शाखाएं होगी तो शाखा नाड़ियां होती हैं 10,100 और इन शाखा नाड़ियों की उपशाखा नाड़ियां भी हैं और इन 10,100 नाड़ियों में से प्रत्येक नाड़ी की उपशाखा नाड़ी है 72,000 एक एक नाड़ी की ऐसे उपशाखा नाड़ियों की संख्या हो जाती है 72,72,00,000। तो ये जो उपशाखा नाड़ी शाखा नाड़ी और मुख्य नाड़ियां इन सब की संख्या को जोड़ते हैं तो कुल मिलकर के मुख्य नाड़ी शाखा नाड़ी और उपशाखा नाड़ी मिलकर के हो जाती हैं 72,72,00,000 10,201 नाड़ियां, प्रत्येक के शरीर में इतनी नाड़ियां हैं और इन नाड़ियों को माना गया इस शरीर के अंदर जो प्राण नाम का प्राण का व्यान नामक एक अवांतर भेद है, वृत्ति विशेष है उसका स्थान। इसलिए कहा गया कि आसु व्यानश्चरती, आसु शब्द से लेना है ये शाखा नाड़िया, उपशाखा नाड़िया और प्रधान नाड़िया। इन सब नाड़ियों में विचरण करता है व्यान नाम का प्राण वृत्ति भेद। अब प्राण तो है अवांतर वृत्ति भेद को लेकर के पांच प्रकार का, उनमें से चार वृत्तियां प्राण की बताई इस शरीर में और उनका स्थान भी बताया गया। अपान का भी स्थान, अपान प्राण समान और व्यान, ये चार प्रकार के प्राण तथा उनके स्थान इस शरीर में कौन है इनका वर्णन हुआ। पांचवा एक भेद बचा उदान नाम का वायु, उस उदान नाम के वायु का वर्णन किया जा रहा है, कार्य बताया जा रहा है तथा उसका इस शरीर में कौन स्थान है इसका भी वर्णन किया जा रहा है सप्तम कंडिका में। और ये जो उदान का वर्णन करते हुए चतुर्थ प्रश्न था उसका उत्तर भी दिया जा रहा है। चतुर्थ उत्तर प्रश्न था केन उत्क्रामते, इस शरीर से प्राण उत्क्रमण किसके द्वारा करता है, इस शरीर से निकलता है तो शरीर से निकालने वाला कौन है, किस कौन लेकर के जाता है, मृत्यु के समय किसका व्यापार इस शरीर से सारे सूक्ष्म शरीर के तत्व भूत सूक्ष्म तथा जीव को ले जाना रूप है, ये चतुर्थ प्रश्न है केन उत्क्रमते। इन शब्दों से इस चतुर्थ प्रश्न का भी उत्तर देना है, इसलिए उदान वायु का वर्णन किया जा रहा है। अथ एकया ऊर्ध्व उदान पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्यलोकम्। तो एकया, ये जो शब्द एकया शब्द है इसका अर्थ है जो मुख्य नाड़ियां बताई गई थी हृदय संबंधी वो कितनी है 101, और उन 101 नाड़ियों में भी दो प्रधान नाड़ी है उसे कहा जाता है एका शब्द से, एक शब्द का अर्थ प्रधान भी होता है। तो 101 जो मुख्य नाड़ियां हैं उनमें जो प्रधान नाड़ी है वो प्रधान नाड़ी है सुषुम्ना नाम की नाड़ी। 101 नाड़ियों में प्रधान नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, और उसे यहां एका शब्द से लेना। तृतीया का एक वचन है एकया नाड्या, तो सुषुम्ना नाम की एक ही नाड़ी से उसी नाड़ी में विचरण करता है ये उदान नाम का वायु। इसलिए ऊर्ध्व उदान यानी ऊर्ध्वसन, और ये नाड़ी हृदय देश से निकल करके पैर के तल से होते हुए जाती है मूर्धा तक, इसकी व्याप्ति है। पहले हृदय से निकल करके नीचे जाती है, नीचे से फिर ऊपर आती है मूर्धा तक। इसलिए ये माना जाता है इस मुख्य प्रधान नाड़ी को आपाद तल मस्तक तक रहने वाली, आपाद कहा जाता है, आपाद तल, पाद तल कहते हैं, पाद का जो नीचे वाला भाग है, तलवा जिसको कहते हैं पैर का, और वहां से लेकर के मस्तक पर्यंत इसकी व्याप्ति है इस सुषुम्ना नाड़ी की। और उसी सुषुम्ना नाड़ी में वो क्या होता है कि हृदय से लेकर के फिर पैर के तलों तक और वहां से मस्तक तक ऊपर के ओर ये गमन करता रहता है निरंतर। इसकी यह ऊर्ध्व गति चलती रहती है उदान वायु की, इसलिए कहा ऊर्ध्वसन, यानी ऊर्ध्व ऊपर के ओर जाता हुआ, पाद तल से मूर्धा के ओर जाता हुआ, उसे उदान कहते हैं। और ये जो उदान वायु है इसका क्या कार्य है, तो जीवित अवस्था में खाली वो अपने इस गोलक रूप सुषुम्ना नाड़ी में कभी पाद तल से मस्तक तक और मस्तक से फिर पाद तल तक आना जाना करता रहता है, इतना ही जीवित अवस्था में उसका कार्य है। जब प्रारब्ध समाप्त होता है इस शरीर में रहने का, इस शरीर में प्रवेश प्राण ने क्यों किया है, उसका निमित्त क्या है, तो निमित्त बताया था मनोकृत शब्द से कर्म को, प्रारब्ध को। तो प्रारब्ध ही प्राण को शरीर में प्रविष्ट करता है और वो प्रारब्ध अपना फलोपभोग जब तक कराना होता है तब तक प्राण और सूक्ष्म शरीर अंतपाती बाकी सारे तत्व चक्षुरादि इंद्रिया उनके अनुग्राहक देवता इन सब को इस शरीर में अवस्थित रखता है। अवस्थिति का निमित्त बनता है कौन, उदान नहीं, ये प्रारब्ध कर्म। उदान तो जीवित अवस्था में कुछ कार्य नहीं करता, अपना शांत रहता, उसका कार्य खाली है जब इस शरीर में रहने का निमित्त भूत प्रारब्ध समाप्त हो जाए और फिर शरीरांतर ग्रहण करने के लिए जीव तैयार हो जाए, इस शरीर से निकल जाए। निकलना है तो उसको ले करके इस शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट करना, इतना मात्र इसका व्यापार है, यही काम करना है उसको। जब तक प्रारब्ध का फलोपभोग नहीं होता तब तक आराम करता रहता है, उसे कुछ भी काम नहीं होता जीवित अवस्था में। तो ये प्रारब्ध जब भोग करके समाप्त होता है तब यह बाह्य इंद्रिया अपने अपने गोलकों में जो स्थित है वो किस लिए स्थित है कि इस शरीर में आए हुए जीवात्मा को उसके प्रारब्ध का फलोपभोग जिन विषयों के माध्यम से करना है उन विषयों को ला करके जीवात्मा तक पहुंचा देती है इंद्रिया, यानी प्रारब्ध भोग में सहयोग करती है। और इंद्रिया तभी अपने अपने विषयों का ग्रहण कर पाती है जब ये उनको प्राण की जो अलग अलग पांच वृत्तियां बताई इंद्रियों के गोलकों में स्थित उनमें से चार प्राण वृत्तियों का अनुग्रह प्राप्त होता है, प्राण परिस्पंदन करता रहता है, तभी इंद्रियां अपने अपने विषयों को जीव का प्रारब्ध भोग हो जाए ऐसे उपयोगी विषयों को ला करके पहुंचाती है जीवात्मा तक। और जब प्रारब्ध समाप्त हो जाए भोग करके, तो ये का इंद्रियों का फिर इस शरीर के गोलकों में रहना आवश्यक नहीं रहा। उद्देश्य जो था प्रारब्ध का फलोपभोग कराना, वह उद्देश्य पूर्ण हुआ, प्रारब्ध पूरा हुआ, तो इंद्रिया फिर अपने अपने गोलकों से निकल जाती है। उनके अनुग्राहक देवता अंश अपने अपने जो अंशी है उसमें जाकर के मिल जाते हैं, और इंद्रिया मन में आकर के संलग्न हो जाती है। और मन का स्थान क्या है? हृदय। हृदय ऐसा आत्मा इससे बताया गया। तो बाह्य इंद्रियों के गोलकों में से इंद्रियों का उत्क्रमण हो गया, यानी निकल गई। और जो जो इंद्रिय निकलती हैं बाह्य गोलकों से, तो उन उन इंद्रियों का व्यापार फिर हमेशा के लिए इस शरीर में बंद होता है। जब वाग इंद्रिय अपने गोलक जिह्वा से उत्क्रमण करके मन में मिल जाएगी जा करके, तो फिर इस शरीर में कभी भी एक शब्द का उच्चारण भी वाग इंद्रिय नहीं कर पाएगी, क्योंकि गोलक में अभी है ही नहीं। जब गोलक में रहती है तभी इंद्रिय अपना व्यापार कर पाती है। नेत्र इंद्रिय जब चक्षु रूपी अपने गोलक से निकल जाता है, तो सामने कितने भी प्रियजन खड़े हो लेकिन वह उनको देख नहीं पाएगा, इसलिए कि चक्षु इंद्रिय निकल गई वहां से। तो देखना तो नेत्र इंद्रिय का काम था, ऐसे श्रोत्र इंद्रिय श्रोत्र का गोलक कर्ण सस्कुले से निकल करके हृदय में प्रविष्ट हो जाता है, मन में जाता है, तो फिर कान में कितने भी जोर जोर से सामने वाले व्यक्ति के, मरने वाले व्यक्ति के आप कुछ बोलना चाहो बोलते रहो लेकिन वो सुनेगा नहीं और उत्तर भी नहीं दे पाएगा। ऐसे सारे बाह्य इंद्रियों का उत्क्रमण हो जाता है, तब बाह्य व्यापार बंद, प्रारब्ध समाप्त हुआ तो। लेकिन मन कुछ समय के लिए रहता है अपने गोलक में, उसका गोलक है हृदय, तो अंदर ही अंदर मन फिर वो सोचेगा। क्या सोचेगा? तो ईश्वर उसे उसके संचित कर्म और वर्तमान जो क्रियमान कर्म है इन सारे कर्मों को दिखा देता है और बताता है कि ये तुम्हारे किए हुए कर्म हैं, इनमें से तुम चुन लो कि कौन से कर्मों का फल तुम्हें इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर से भोगना है, निश्चित कर लो। वो सारे कर्म दिखा देते हैं ईश्वर, मन को दिखा देते हैं, मन ही तो निर्धारण करता है, मन कर लेता है। मन का व्यापार उस समय रहता है, अंतकरण है ना, बाह्य इंद्रियों के व्यापार शांत हो गए, मन का व्यापार चल रहा है इसी शरीर में। और सारे कर्मों की रील ईश्वर दिखा देते हैं, वो देख लेता है पूरी फिल्म। उनमें से इस जन्म के कर्म भी अभी जो किए थे और पहले अनेकों जन्मों से किए हुए जो कर्म हैं जिनका फलोपभोग नहीं कर पाए, संचित जिसको कहा जाता है, उन दोनों को मिला करके एक फिल्म होती है और दिखा देता है दोनों को मिला करके। फिर इनमें से जिनको याद रखता है मन देख करके कि ये कर्म मैंने किए हैं, इनका फल भोगना है भावी शरीर से, ऐसा वो निश्चित कर लेता है। तो जितने वो सारे कर्म देखने के बाद याद रह गए, उसको माना जाता है कि जीवात्मा उन्हीं कर्मों का फलोपभोग करना चाहता है। तो वो ऐसा नहीं होता, जिसको ज्यादा छिपाता है वो ज्यादा याद रखता है। पुण्य तो थोड़ा करता है, प्रचार प्रसार ज्यादा करता है, और पाप छिपा करके रखता है। तो जिसको ज्यादा गुह्य समझता है, ज्यादा कीमती जो गहना हो, भारी नोट हो, छिपा करके जहां रखी हुई है, याद रहता है बुद्धि में, दूसरों को नहीं बताता, लेकिन स्वयं तो याद रखता है कि ये जो है हीरा हमने यहां रखा हुआ है। जो ज्यादा दूसरों को नहीं बताना आता, वो अपना स्वयं याद ज्यादा रखता है, वही ज्यादा याद आएगा फिर, जिसको जीवन में ज्यादा याद रखा है। सदा तद्भाव भावित के अनुसार अंतिम में वो कर्म याद रहेंगे जिन पर हमने ज्यादा मन लगाया है, और जिन जो याद रहे वो भावी शरीर का प्रारब्ध हो गया, ये माना जाता है। अभी वो शरीर बना नहीं है, इसलिए इस शरीर को छोड़ने के पहले भावी शरीर को बना लेता है जीव कि ये हमें भोगना है, ऐसा भावी शरीर का प्रारब्ध पहले बन जाता है। और जैसे ही वो भावी शरीर का प्रारब्ध बन जाता है, तो फिर मन का व्यापार शांत हो जाता है, फिर मन प्राण में मिल जाता है, और प्राण मिल जाता है जीव के साथ भूत सूक्ष्मों को लेकर के ईश्वर में, और ईश्वर इन सब को लेकर के देखते हैं, ईश्वर के अधीन हुआ ये भूत सूक्ष्म, सारे सूक्ष्म शरीर के तत्व और जीव। उस समय फिर कर्मफल विधाता है ना ईश्वर, पहले तो सामान्य रूप से कर्म सारे के सारे दिखा दिए, संचित और क्रियमान, उनमें से जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया, जिनको वह भोगना चाहे उनको चुनने के लिए, निश्चित करने के लिए, और जितने को याद रखा, मान लिया कि उनका फल वह भोगना चाहता है, फिर ईश्वर के पास गया, ईश्वर देखते हैं कि इसने कौन से कर्म याद रखे हैं, उन कर्मों का फल 84 लाख प्रकार के शरीरों में से कौन से शरीर में भोगा जा सकता है, इसका निर्धारण ईश्वर करता है। जीव तो खाली कर्म का निर्धारण करता है कि ये कर्म हमें, इन कर्मों का फलोपभोग करना है, ये मरने वाले जीव ने निश्चित किया, और फिर उन कर्मों का फल जिस शरीर में भोगा जा सकता है, ऐसे शरीर के रूप में परिणत होने की उसके भूत सूक्ष्म में शक्ति अपने संकल्प से ईश्वर प्रदान करता है। भूत सूक्ष्म यानी स्थूल शरीर का उपादान कारण, जो भावी स्थूल शरीर मिलना है उसका उपादान कारण भूत सूक्ष्म, स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश है। वह जब एक ईश्वर के पास गया, तो उस समय उस भूत सूक्ष्म में सामान्य मात्र स्थिति है उसकी, किसी शरीर विशेष के रूप में अंकुरित होने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। ईश्वर फिर जीवात्मा के कर्मों को देख करके उस भूत सूक्ष्म में अपने संकल्प से भावी शरीर के रूप में परिणत होने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तब वो भावी शरीर के रूप में जीवात्मा को, मरने वाले जीवात्मा को दिख जाता है। ईश्वर ने संकल्प करते ही उसका जो भूत सूक्ष्म है उसे भावी मिलने वाले शरीर के रूप में यहीं पर दिख जाता है और फिर उस शरीर को अपनी अहंता से वो पकड़ लेता है, फिर इस वर्तमान शरीर से अहंता को छोड़ता है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में तृणजलुका का दृष्टांत आता है। एक तृणजलुका नाम का कीट होता है ना, वह घास पर चलता है और चलते चलते जब उस तृण के अग्रभाग में जाता है तो दूसरे तृण को अपने शरीर के आधे हिस्से से पकड़ लेता और आधा हिस्सा रख लेता है पूर्व आश्रयभूत जो तृण है उसी पर। और जब अच्छी तरह से दूसरा तृण पकड़ में आ जाता है आश्रय के रूप में तो पूर्व आश्रय में स्थित जो अपने शरीर का भाग है उसे पूर्ण रूप से हटा करके जो नया पकड़ा है उसमें स्थापित कर देता है। ऐसे ही यह मरने वाला जीव इसी शरीर में रहते रहते ईश्वर के द्वारा संकल्पित जो भावी शरीर है उस शरीर को अपनी अहंता का आलंबन बना लेता है। वो बनाने से पहले तक इसी शरीर में उसकी अहंता रहती है। जैसे ही वो ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर उसे दिखा फिर उसने उसे पकड़ लिया मैं के रूप में और पकड़ करके इस शरीर से अहंता का व्यावर्तन कर लिया, अहंता को हटा दिया। हाँ, इसी शरीर में रहते रहते तो जैसे ही भावी शरीर पकड़ लिया तो माना जाता है भावी जन्म प्रारंभ हुआ उसका। अब वो जो कर्म है वो कौन से याद रखे हैं उसने? यदि पुण्य कर्म याद रखे हैं तो पुण्य कर्म का फलोपभोग देवादि शरीर से होता है, तो देवादि शरीर की का संकल्प ईश्वर करेंगे कि इन पुण्य कर्मों का फलोपभोग उसे जिन इंद्रादि शरीरों से होना है इसका भूत सूक्ष्म स्वर्ग में इंद्रादि शरीर के रूप में परिणत हो जाए, ऐसा संकल्प ईश्वर का होगा। और इसी संकल्प से फिर निर्मित जो शरीर है उसे वो पकड़ेगा। उसे यहां पर कहा गया कि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, तो पुण्येन यानी पुण्येन कर्मणा, जब पुण्य कर्म उसका भावी जन्म का प्रारब्ध बन करके फलोन्मुख होता है, संचित में से पुण्य कर्म हो या इस जन्म में किया हुआ पुण्य कर्म हो, जीव जिस किसी भी पुण्य कर्म को याद रखता है तो बाकी सारा फिर जितने को याद रखा उतना तो भावी शरीर का बन गया प्रारब्ध, और जो विस्मृत हुआ उसको कहा जाएगा संचित, वो संचित कोटि में चला गया और वो सब का सब रहेगा जीवात्मा की उपाधि बुद्धि में ही सूक्ष्म रूप से अपूर्व बन करके अदृष्ट बन करके रहेगा बुद्धि में। और इसी में से बार बार शरीर छोड़ते समय जो नया क्रियमान कर्म किया वह और ये संचित, इनको देख करके भावी शरीर का प्रारब्ध बनाता जाएगा। प्रत्येक बार हरेक शरीर छूटते समय यही प्रक्रिया बनती है और प्रत्येक अज्ञानी की ऐसी होती है। तो पुण्य कर्म याद रहा तो ये उदान नाम का जो वायु है वह इन सब को जीवात्मा की उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो 17 तत्व हैं वे और भावी शरीर का उपादान कारण जो भूत सूक्ष्म वो इन सब को लेकर के सुषुम्ना नाड़ी में विचरण करने वाला जो उदान नाम का वायु है वह ले जाता है इनको। कहां पर ले जाएगा? तो पुण्य न पुण्य कर्म उसका प्रारब्ध है तो पुण्यम लोकम नयति, यहां लोकम शब्द का अर्थ है शरीरम, लोक्यते कर्मफलम अनुभूयते अस्मिन् इति लोकः, ऐसी लोक शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो लोक शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा, जिसमें स्थित होकर के अपने कर्म का फलोपभोग करता है, जहां रह करके उसे कहा जाता है लोक। तो जीवात्मा कहां रह करके अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों का फलोपभोग करता है, शरीर में, 84 लाख प्रकार के शरीर में, इसलिए शरीरों को भोगायतन कहा जाता है। भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। सुख ये पुण्य कर्म का फल है, उसका साक्षात्कार यानी अनुभव, और पाप कर्म का फल दुख का अनुभव, इसी का नाम भोग है। सुख का अनुभव करना या दुख का अनुभव करना, ये भोग है। और जीवात्मा को सुख दुख का अनुभव जहां होता है उसे कहा जाता है लोक भोगायतन। वो शरीर में, बिना शरीर के जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। जिस शरीर में वह तादात्म्य अभिमान कर लेता है, उसी शरीर में स्थित होकर के अपने प्रारब्ध कर्म का फल सुख दुख का अनुभव करता है। इसलिए शरीर को कहा जाता है भोगायतन, और भोगायतन का ही दूसरा नाम लोक भी है। और ये लोक 3 प्रकार का है। लोक यानी शरीर, एक उत्कृष्ट शरीर, दूसरा निकृष्ट शरीर, तीसरा मध्यम शरीर। उत्कृष्ट है मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट देवादि का शरीर, उसे माना गया पुण्यलोक, यानी पुण्य कर्म का फलोपभोग जिस शरीर में किया जाता है वह शरीर पुण्यलोक नाम से कहा जाता है। और उस शरीर में यह उदान वायु ही इस शरीर से निकाल करके जीव को ले जाती है। इसलिए केन उत्क्रमते, ये जो प्रश्न था ना, इस प्रश्न का उत्तर है कि उदानेन उत्क्रमते, ये इस शरीर में रहने का निमित्त भूत प्रारब्ध कर्म समाप्त होने के बाद और भावी शरीर के प्रारब्ध का निर्धारण होने के बाद भावी शरीर का निर्धारण यदि देव शरीर के रूप में हुआ है, पुण्य कर्म प्रारब्ध बनकर के सामने आया है, तो देव शरीर में इस जीवात्मा को ले जाता है मानव शरीर से निकाल करके उदान वायु। ये पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, कौन ले जाता है तो नयति का कर्ता होगा उदान, ये सुषुम्ना नाड़ी में विचरण करने वाला उदान ही देवलोक में ले जाता है। और पापेन पापम, वो जो प्रारब्ध कर्म है, कर्म की फिल्म देख करके निर्धारण करते समय पुण्य कर्म याद नहीं रहा, पाप कर्म ही याद रहा, वहां नहीं, यहीं पर बताया जा रहा है ना कि मानव शरीर छोड़ने वाले सब के सब देवता ही बनेंगे, ये थोड़ा ही है। तो मानव शरीर छोड़ते समय जिनका प्रारब्ध पुण्य कर्मात्मक बना, उन मनुष्यों को तो उदान वायु ने मानव शरीर से देवता शरीर में पहुंचा दिया, और जिन मनुष्यों का शरीर छूटते समय वो कर्म पापात्मक ही याद रहा, और फिर वही पाप उसका भावी शरीर का प्रारब्ध बनेगा, उन्हीं सब कर्मों को लेकर के ईश्वर के पास जाएगा, ईश्वर देखेंगे, और ईश्वर के पास जाएगा का मतलब ईश्वर के अधीन होगा। ईश्वर तो कहां है, प्रत्येक के हृदय में है ना, ईश्वर सर्वभूतानां रद्दे शरुण तिष्ठति भ्रामेण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो अपने ही हृदयस्थ जो ईश्वर है उन्हें दिखाएगा कि ये कर्म है, तो इन कर्मों का फिर फल जिस मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में भोगा जा सकता है, उन पाप कर्मों का फल उस शरीर का संकल्प ईश्वर करेंगे कि इस जीवात्मा का भूत सूक्ष्म उस शरीर के रूप में परिणत हो जाए। ऐसा जैसे वो संकल्प करेंगे ऐसा ही शरीर फिर उसे दिखेगा। ये मनुष्य शरीर में रहते रहते ही भविष्य में यदि ऐसा पाप कर्म ही याद रहा जो चूहा शरीर में भोगना है तो चूहा ही उसको दिखेगा, बिल्ली शरीर में भोगने लायक कर्म याद रहा तो बिल्ली शरीर दिखेगा, जो भी शरीर वो प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के द्वारा संकल्प से उसे दिया जाएगा वो शरीर उसे दिखेगा, अपनी अहंता को उसी शरीर में स्थापित करेगा, इस शरीर से वह अहंता समेट जाएगी उसकी, उस शरीर में जाएगी और वहां से फिर यह जीव को लेकर के उदान वायु उस शरीर में पहुंचाएगा। इसे कहा गया पापेन पापम लोकम नयति, लोकम नयति इन दोनों पदों का पापम के साथ भी अन्वय करना, तो पापेन यानी पापेन कर्मणा, तो पापात्मक कर्म ही फलोन्मुख हुआ तो वो पाप लोक यानी मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में यह उदान वायु मनुष्य योनिस्थ जीव को निकाल करके उस योनि में पहुंचा देता है, यह अर्थ निकलेगा। और उभाभ्याम एव मनुष्यलोकम, और जब शरीर छूटते समय पुण्य पाप दोनों भी याद रह जाए समान रूप से, पुण्य पाप दोनों याद रह गए तो वो दोनों का फलोपभोग मिश्र योनि मानी जाती है, मध्यम योनि मानी जाती है मनुष्य योनि, इसमें उत्कृष्ट सुख को सहन करने का भी सामर्थ्य नहीं है और अति दुख सहन करने का भी सामर्थ्य नहीं है मनुष्य योनिस्थ जीव में, इसलिए मध्यम सुख और मध्यम जो दुख है उसी को सहन कर पाता है, अत्यधिक दुख भी सहन नहीं कर पाएगा, अति सुख को भी सहन नहीं कर पाएगा। तो ये जो पुण्य पाप इन दोनों को समान रूप से याद रखा शरीर छोड़ते समय यदि, तो फिर ईश्वर देखते हैं कि इन पुण्य पाप कर्मों का फलोपभोग मानव शरीर से ही हो सकता है, तो उसे भावी शरीर के रूप में मानव शरीर का ही संकल्प करते हैं, फिर ईश्वर के द्वारा संकल्पित वह जो मानव शरीर है उसके अहंता का आलंबन बन जाता है, इस शरीर से अहंता निकल जाती है, उदान वायु फिर इस शरीर से निकाल करके जिस शरीर में मृत्यु होनी है वहां से निकालता है और उस शरीर में पहुंचा देता है मनुष्य शरीर में फिर। तो इस प्रकार ये कहा गया कि उदान वायु ही जीवात्मा के उन सारी उपाधियों के साथ जीवात्मा को इस शरीर से निकाल करके भावी शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है, ये उदान का कार्य है। तो ये सप्तम कंडिका में इस प्रकार ये चर्चा हुई, प्राण के पांच भेद बताए गए। तो तृतीय प्रश्न था ना कि आत्मानं प्रविभज्य वा कथं प्रातिष्ठते, एक प्रश्न था आचार्य पिपला जी के प्रति, तो इसका उत्तर देते हुए उन्होंने बताया आचार्य पिपला जी ने कि प्राण पांच विभागों में अपने आप को विभक्त करके इस प्रकार इस शरीर में अलग अलग स्थानों में स्थापित करता है और जीवित अवस्था में चार वृत्तियों का कार्य होता है और मृत्यु के समय उदान वायु का कार्य होता है, वह शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब ये जो पांचवा और छठवां प्रश्न है वो है कि कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम, ये पांचवा प्रश्न है और छठवां प्रश्न है। इसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं आचार्य पिपलाद जी। इसके लिए बाह्य शब्द का अर्थ बताया गया था, जगत तीन विभागों में विभक्त है ना, एक अधिभूत, दूसरा अधिदैव, तीसरा अध्यात्म। तो बाह्य शब्द से तो लेना अधिभूत अधिदैव को, तो अधिभूत तथा अधिदैव का भी आश्रय ये समष्टि प्राण जिसको यहां उपास्य बताया जा रहा है, वही अधिदैव जगत को भी धारण करके रखता है, वही अधिभूत जगत को भी धारण करके रखता है। ये पहले प्राण में गुण बताया था सर्व विधारकत्व गुण उपासना के लिए, उसी के सर्व विधारकत्व रूप गुण को स्पष्ट करने के लिए ये प्रश्न है कि कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम वा। तो सर्व विधारकत्व प्राण में दिखाने के लिए प्राण अधिदैव जगत को तथा अधिभूत जगत को, ये दोनों बाह्य शब्दित हैं, कैसे विधारण करके रखता है, कैसे धारण करता है, ये पंचम प्रश्न है। और छठवां प्रश्न है कि कथम अध्यात्मम वा, या अध्यात्म का धारण भी कैसे करता है अध्यात्म जगत का। तो इसमें ये पंचम प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले प्राण के अधिदैव स्वरूप को बताया जा रहा है कि प्राण ही अधिदैव में अलग अलग पांच प्रकार का है। जैसे अध्यात्म पांच प्रकार है ना, उसके अध्यात्म पांच प्रकार हुए, प्राण अपान व्यान समान उदान, ऐसे अधिदैव पांच प्रकार है प्राण के। एक तो आदित्य, दूसरा अग्नि, तीसरा अंतरिक्षस्थ वायु, चौथा सामान्य वायु और पांचवा सामान्य तेज। ये पांच प्रकार हैं अधिदैव के, किसके अधिदैव स्वरूप प्राण के, ये पांच प्रकार हैं। एक आदित्य को माना जाएगा, आदित्य का एक प्रकार अधिदैव प्रकार, दूसरा अग्नि को, तीसरा अंतरिक्षस्थ वायु को, चौथा सामान्य वायु को। अंतरिक्षस्थ वायु और सामान्य वायु, इन दोनों में अंतर है, वो वायु विशेष है अंतरिक्षस्थ वायु, सामान्य वायु है जो खाली अंतरिक्ष में ही नहीं है, वो तो सब जगह है, वो सामान्य वायु है। और एक तेज, यद्यपि अग्नि और आदित्य भी तेज है लेकिन वो तेज विशेष है, आदित्य भी एक तेज विशेष है, अग्नि भी एक तेज विशेष है। और यहां तेज एक तीसरा प्रकार जो बताया जा रहा है वो है तेज सामान्य। ऐसे अधिदैव में आदित्य के पांच रूप बताए जाएंगे और ये पांच रूप आदित्य के प्राण के जो अध्यात्म पांच रूप बताए गए थे उनमें से एक एक के अनुग्राहक हैं। और आधी भौतिक रूप प्राण का हो जाएगा, अध्यात्म जो प्राण के रूप है चक्षुरादि गोलकों में स्थित, उन गोलकों में स्थित तत्तद इंद्रियों से ग्राह्य विषयात्मक जो रूप है वो उसे माना जाता है अधिभूत रूप। इस प्रकार ये प्राण ही अधिभूत रूप से, अधिदैव रूप से और अध्यात्म रूप से अवस्थित है, और उस रूप से प्राण का ही अवस्थित होना ये उस जगत को धारण करना है, ये बताया जा रहा है आने वाली दो कंडिकाओं में, प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रकरण में। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरिओम।